सीधा रे श्याम। तो ये ललिता देवी का गांव है। आप जानते हैं राजा रानी के 8 सखियां हैं। राजा रानी के पिताजी के 8 भाई थे, 4 बड़े 4 छोटे। तो हर एक भाई को एक कन्या हुई और वो सारी 8 जो कन्याएं हैं वो 8 गांव में रहा करती थी और वो राजा रानी की अष्ट सखी बनी। दे आर ऑल फर्स्ट कजिन्स ऑफ राजा रानी। तो सबसे बड़ी जो है वो है ललिता देवी और राजा रानी से उम्र में भी बड़ी है। उनकी गुरु भी हैं, वो उनके रक्षक भी हैं। और ललिता देवी के पिताजी का नाम है अशोक महागोप और माताजी का नाम है शारदा देवी। और ये पर्वत जो है उसका नाम भी अशोक पर्वत है और फिर उसका अपभ्रंश होकर उसको अटोर पर्वत कहते हैं, जो बोलने में फर्क आता है ना उसमें। लेकिन ये अटोर पर्वत अशोक पर्वत है, यहीं पर ललिता देवी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को। यहाँ पर बहुत बड़ा ललिता जन्मदिन मनाया जाता है और ललिता देवी प्रधान सखी है कृष्ण राधा रानी की, टॉप मोस्ट, सबसे ज्यादा क्लोज ललिता देवी है। और ललिता देवी पर बहुत विश्वास है राधा रानी का। तो राधा रानी बेचारी बहुत भोली भाली है, उसको कभी भी आके कृष्ण भगवान तंग कर देते हैं, कभी भी उसका मतलब एम्बेरेस कर देते हैं उसको। तो ललिता देवी बहुत तेज है, बहुत क्या कहते हैं वाम विचार की है, बहुत ही इधर लिखा है कॉन्ट्रडिक्टरी नेचर की है, बहुत एकदम स्ट्रांग नेचर की है। वो खुद के लिए नहीं, राजा रानी को रक्षा करने के लिए उसको बनना पड़ता है। मैंने देखा है एक भांडीरवन में हमारे एक पहचान के गोस्वामी थे, वो बड़े अच्छे मित्र थे हमारे महाराज जी के, हर बार दिखते थे। उनकी पत्नी बड़ी पल्ला पल्लू करके अंदर बैठती थी, कभी दर्शन नहीं दिया उसने, कभी कुछ भी नहीं किया, कभी उसका चेहरा देखा ही नहीं हमने। लेकिन वो हमारे लिए भोजन बनाते थे, गाते थे वगैरह, बड़ी एकदम सिंपल सी अंदर अंदर रहने वाली थी। एक दिन ना ब्रेन स्ट्रोक होके सतीश गोस्वामी का देहांत हो गया। उसके बाद में जो माता जी का रूप मैंने देखा, मतलब जो उसका रुख देखा, मैं तो हैरान हो गया। क्योंकि अभी वो अस्तित्व की लड़ाई थी ना, अभी पति गुजर गए तो 3 बच्चों को देखभाल खुद करना है, अभी घूंघट में बैठेंगे और शर्मा के रहेंगे तो उनको पेट कौन भरेगा। शी बिकम सो एग्रेसिव। तो उनका जो एग्रेशन था वो परिस्थिति के अनुसार किया हुआ नेचर चेंज था, परिवर्तन था। वो अपने आप स्वभाव में ऐसे नहीं थी वो, लेकिन जब बच्चों का सुरक्षित रहने का प्रश्न आया तो फिर वो कठोर बन गई एकदम। क्योंकि उसको धन भी कमाना था, बच्चों को पेट भी भरना था, उनको सिखाना भी था और जो आजू बाजू में आतंक हो रहा था उसको भी सामना करना था। तो एकदम परिवर्तन देखा मैंने उनको। तो ललिता देवी का स्वभाव बहुत कोमल है वैसे, लेकिन कृष्ण भगवान का आतंक देखकर वो उसको कठोर बनना पड़ता है। तो राधा रानी बेचारी हमारी कैसे रहेगी। और उनका वर्ण जो है ना वो गोरोचन का है। गोरोचन यानी गाय के स्वादु ग्रंथि में एक द्रव्य होता है, उसको हम बाइल कहते हैं ना, बाइल, उससे वो गोरोचन बनता है। मैंने कभी देखा नहीं है, एक बार कभी देखा था जब मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो रही थी। ऐसे हल्के हल्के हरे रंग का होता है वो बहुत कीमती वस्तु है। तो वो गोरोचन का रंग उसके शरीर का रंग है। और हर एक सखी का एक निजी निकुंज होता है। अभी देखो एक बात समझ लो आप कि कुंज होता है एक निकुंज होता है। कुंज जो है वो खुला होता है, देवता भी ऊपर से देख सकते हैं, अनेक तरह से खुला होता है वो। उसमें वो सामान्य बाकी लीलाएं होती हैं, लोग चाटन की हो या ऐसे जैसे। लेकिन जब भी प्राइवेट लीला का समय आता है तो निकुंज में एक लीला करते हैं। निकुंज यानी सब जगह से बंद रहता है, ऊपर से भी बंद रहता है, एक ही गेट रहता है, वहां सखी खड़ी रहती है, सब लोग प्रवेश नहीं कर सकते। जिनका जिनका नाम है, रजिस्ट्रेशन है, उनको ही प्रवेश मिलता है अंदर। तो ये सभी सखियों का अपना खुद का एक निकुंज है। तो ललिता देवी का जो निकुंज है उसका नाम है स्वानंद सुखदा कुंज। क्या सुना है नाम आपने? हाँ, ठाकुर भक्ति विनोद ने अपने घर का नाम भी गोदरूम में ये रखा है, स्वानंद सुखदा कुंज। और एक नाम है रहस्य कुंज। ये कुंज का भी एक वर्ण होता है, विद्युतवत, यानी बिजली का तरह रंग है उसका, लाइक लाइटनिंग ऐसा रंग है उसका। फिर ये जो कुंज है ललिता का, कितनी मेरे को इतना, मैं आपने देखा हम पढ़ते उठते इतना हंस रहा था मैं आनंद से, कि 6 ऋतु जो है ना, 6 ऋतु वो ललिता के नियंत्रण में रहते हैं, वृंदा देवी के भी रहते हैं, ललिता के नियंत्रण में रहते हैं। तो 6 ऋतु मिलकर इस कुंज का रक्षा करते हैं, इस कुंज का भाव को बनाए रखते हैं। हाउ वंडरफुल ना, हाउ सटल एंड हाउ वंडरफुल, कि 6 ऋतु को उस कुंज को मेंटेन करने का काम दिया है और बड़े प्रेम से करते रहते हो। ये जो उनका कुंज है वो कमलाकार है, जो अष्टदल कमल है उसका अर्घ है, और जब इच्छा होती है तब कम और ज्यादा, कम और ज्यादा हो जाता है, ऐसे उसका कुंज का वर्णन है। अभी आपको मैं एक जो कल बताई कथा भोजन थाली में ब्रह्मा जी की, है ना, किसी ने प्रश्न पूछा तो मैं बताते गया। तो एक साल तक भगवान सब ग्वाल बाल बने रहे, है ना, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं लीला किया उन्होंने, उनके लिए बहुत प्लान था उनके मन में बहुत सारा, ब्रह्मा जी का बहाना बनाया और अपना अपना काम। वो कहते ना, मेक द बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। अरे बच्चे चुराई लिए हैं, चलो अपना लीला कर लेते हैं, इसमें क्या है, भगवान के भक्त बनो, आपके जीवन की बिगड़ी बात भी बहुत आनंद के, क्या कहते हैं उसको, सद्भाग्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ये मेरा अनुभव है, कितना भी दुख होगा जीवन में ना, बहुत निगेटिव घटना घटनी होगी, भगवान की भक्ति में वो सारी भाग्य में उसका रूपांतर हो जाता है। बृहद भागवतामृत में भगवान ने स्वयं कहा है कि भगवान की भक्ति करने से और भगवान पर प्रेम करने से सबसे दुखद घटना भी सद्भाग्य में रूपांतरित हो जाती है। ऑल द मिजरेबल सिचुएशंस इन लाइफ टर्न आउट टू बी बेस्ट फॉर दोज हु लव गॉड, ऐसे भगवान बृहद भागवतामृत में समझाते हैं। बहुत समर्पक वाक्य है वो कृष्ण भावना के प्रति। तो दुर्घटना क्या हुई है, अरे सारे बच्चे चोरी हो गए, सब लोग अभी पता नहीं क्या, माओं को बताऊंगा, उनके मैयाओं को क्या बताऊंगा, मुझे बच्चों को ले गए थे, आपको अकेले लौट के आए, किधर है हमारे बच्चे, कोई बात नहीं, उनका सबका रूपांतर कर दिया। सब गायों की इच्छा थी कि अरे कृष्ण हमारा बछड़ा बनकर दूध पिए, तो सब बछड़ा बन गए और उन्होंने कृष्ण ने सबका दूध पिया, है ना, गायों का। सभी मैयाओं की इच्छा थी, अरे तो सुधा का लाला है, बहुत भाग्यवान है वो, और हम भी उनकी माँ बनना चाहते हैं, अभी भगवान की इच्छा रही उनकी माँ बनने की इच्छा पूरी करें, तो सब ग्वाल बाल बने, उनका स्तनपान किया, सबको माताओं को सुख दिया। एक साल तक सब घर में, सब गौशाला में कृष्ण ही कृष्ण थे। और उसके पहले एक बार ना राधा रानी और गोपियों की शादी का विवाह करने का प्रस्ताव निकला था, तो पूर्णमासी ने उसको फेल कर दिया। पूर्णमासी गुरु है गोपियों की, पूर्णमासी ने कैसा फेल कर दिया, अरे वो आकाश में तारे वारे अभी ठीक जगह पर नहीं है, वो सब शकुन ठीक नहीं है, वो क्या बोलते ना, मुहूर्त ठीक नहीं है, समय अच्छा नहीं है, शनि का काल है और वो राहु का दृष्टि है उसके ऊपर वगैरह वगैरह बोलते, तो ये सब बता के गोल गोल घुमा के प्लान कैंसिल कर दिया उन्होंने। सब बड़ी गोपियां व्याकुल हो गई, अरे हमको कृष्ण के साथ विवाह करना है, सर्वत्र कृष्ण का दृष्टि, सब जगह कृष्ण को देखते थे, कृष्ण को चाहते थे, कृष्ण की इच्छा करते थे। तो सब लोग तपस्या करने बैठ गए, कोई मनोकामना कर रहा है, तो भगवान की इच्छा थी कि इन सबका भी इच्छा पूरी कर देंगे, वो जो मुझे पति के रूप में बनना चाहते बनाना। तो जब ये एक साल चल रहा था, देखो कितना भगवान की लीला कितनी सूक्ष्म और कितनी डिटेल में होती है। नंद बाबा के पास गए, बाबा अभी तो मौसम बहुत बढ़िया है, मुहूर्त भी अच्छे हैं, सब तारे अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, अभी आपको सभी गोपियों का, सभी गोपालों के साथ विवाह कर देना चाहिए। तो नंद बाबा ने इस बात को राजा के रूप में मान ली और सभी गोपियों की, सभी गोपालों के साथ शादी कर ली। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, कृष्ण के साथ सबकी शादी हुई और एक साल भगवान सबके घर में पति के रूप में रहे और सबको पत्नी बनने का आनंद दिया। और वो दूसरे जो थे ना, उनके नाम वाले, समझो फॉर एग्जाम्पल जटिला कुटिला के घर में अभिमन्यु थे, जटिला का बेटा, कुटिला का भाई, वो तो उधर सोया हुआ है ब्रह्मा जी के गुफा में सम्मोहन में, है ना, यहाँ पर अभिमन्यु बने हुए कृष्ण, उनका विवाह राधा रानी के साथ में हो गया, समझ आया ना आपको, एक साल साथ में रहे, बाद में जब लौट के आए अभिमन्यु वगैरह तो कृष्ण ने अपना रूप तो निकाल लिया पूरा। कहते हैं कि किसी भी गोप ने अपने पत्नी को पत्नी के रूप में व्यवहार नहीं किया, आदर सही दूर रहे उनसे। कुछ कुछ गोपियों ने अपने पति का संबंध किया, उनको बच्चे भी हुए, लेकिन जो बहुत उन्नत गोपियां थी उनके साथ में उनके पतियों ने संबंध नहीं किया। ब्रज का भाव समझना बहुत मुश्किल है। तो उस सब व्यवहार विवाह संस्था में, क्या बोलते हैं उसको, महोत्सव में ललिता का विवाह भैरव गोप के साथ में हुआ, चंद्रावली का विवाह गोवर्धन मल्ल के साथ में हुआ, और गोवर्धन मल्ल जो है और भैरव गोप बड़े अच्छे मित्र थे। गोवर्धन मल्ल जो है वो गोवर्धन के पास उनका घर है, बिलचुकुंड के पास, सखी स्थली कहते हैं उसको, और राधा रानी की राइवल गोपी है ना चंद्रावली, उनका गुट अलग है, ठीक है। तो आप लोग, कल मैंने कहानी बताई कि जब भगवान मथुरा में थे, वहां से रातों रात गोकुल में आए, वहां पर 3 साल 4 महीने रहे, बहुत आतंकवाद से वहां से शिफ्ट हो गए, छठे ग्रह में आके रहे, चटिकरा से काम्यवन में गए, काम्यवन में भी उनका रहने का निवास है, वहां से वो नंदगांव आए हैं। तो नंदगांव जब आए हैं तो राधा कृष्ण का नंदगांव आने के बाद में पहला मिलन जो है वो ललिता ने करवाया है। कहां पर करवाया है? प्रेम वन में। प्रेम सरोवर उसके बाद में, पहली बार मिले उसके बाद में जब बैठकर रोए तो प्रेम सरोवर का निर्माण हुआ। सिक्वेंस भी जरूरी है ना, सब खड़े खिचड़ी बना सकते हैं हम लोग। तो ललिता देवी बड़ी चतुरता से उन्होंने राधा कृष्ण का मिलन यहाँ पर किया है। उसके बाद में वो ललिता देवी और विशाखा देवी ऐसे अष्ट सखियां हैं, नाम सुना दो आपको, लिखेंगे आप लोग, याद करना भी बहुत आसान है। राधा कृष्ण खड़े ऐसे, कृष्ण यहाँ पर है, उनके बाई साइड में राधा रानी खड़ी है, तो कृष्ण के साइड में ललिता खड़ी है, देखो चित्रित करो मन में, हाँ राधा के साइड में विशाखा खड़ी है ललिता, तो उसके बाद में और एक ता खड़ी है, कौन? चंपक लता। ललिता के साइड में चंपक लता, विशाखा के साइड में और एक खा खड़ी है इंदुलेखा, याद करने के लिए सिंपल है। इंदुलेखा के साइड में दो देवियां खड़ी है, रंग देवी सुदेवी, तो दोनों एक ही दिन जन्म हुआ उनका, एक ही दिन में जन्म हुआ है। और यहां पर जो चंपकलता है वहां पर तुंग विद्या और चित्रा सखी, चित्रा सखी पहले बाद में तुंग विद्या, ऐसे आठ सखियां हैं। इनके अपने अपने गांव हैं, चित्रा सखी का चिकसोली गांव है और विशाखा का अंजनवन गांव है, ललिता देवी का उच्च ग्राम है, फिर रंग देवी का डभारा गांव है, ऐसे सुदेवी का सुनहरा गांव है, तुंग विद्या का कमई गांव है, कामनावन, बहुत सुंदर सुंदर। अभी एक अष्टदल कमल की तरह है, बीच में बरसाना, कमल के बीच का जो स्थान था ना, वर्ल ऑफ द लोटस, बरसाना है, उसके आगे आठ गांव है, सखिया रहती वहां पर। तो ये हर सखी के तीन मंजरिया सेविका होती है, सबसे प्रधान सखी है भगवान की, परम सखी, आठ सखियां, वो हर एक सखी की तीन तीन गोपियां मंजरी रूप में रहती है, मंजरी यानी उसके नीचे के लेवल का। तो ललिता देवी की तीन सखियां हैं, रूप मंजरी, लबंग मंजरी और अनंग मंजरी, ये तीन मंजरियां, रूप मंजरी, लबंग मंजरी, अनंग मंजरी, वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बनकर आए हैं। और रूप गोस्वामी हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, तो अल्टीमेटली हम लोग सब ललिता के अनुयायी हैं, समझ में आया आपको? क्योंकि रूप मंजरी उनकी अनुयायी है, उनके निर्देश में काम करती है, और रूप मंजरी रूप गोस्वामी बनकर आए हैं, वो हमारे संप्रदाय के प्रमुख हैं। उसमें और एक सुंदर कथा है चैतन्य चरितामृत में, जब चैतन्य महाप्रभु उस दुंडीचा मंदिर का मार्जन कर रहे थे ना, साफ सफाई कर रहे थे, तो अचानक एक बंगाली भक्त आया, उसने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जल डाला, ऐसे उनको चरणों का जल पीना था, उनके जल डाला और जल बह के आया तो उसको पिया उसने, तो महाप्रभु ने बाह्य रूप से नाराजगी प्रकट की, अंदर से वो प्रसन्न हो गए थे। एक बार किया, दूसरी बार भी किया, फिर पिया, और तीसरी बार भी किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य रूप से क्रोध जताया, और जो ललिता के अवतार हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की लीला में, उनको बुलाया, क्योंकि वो बंगाली भक्तों के इंचार्ज थे गौड़िया वैष्णव के, तो उनको बुलाया और ए स्वरूप इधर आ जा, देख तुम्हारे बंगाली भक्त कैसे हैं, कोई शिष्टाचार नहीं कुछ नहीं, भक्त के चरणों में पानी डालकर पीते हैं, ये कोई तरीका है? जाओ उनको ट्रेनिंग दे दो अच्छी तरह से, अच्छे वैष्णव बनाओ, शिष्टाचार सिखाओ, ट्रेनिंग दे दो, क्या से पहनना है, क्या करना है, क्या कार्य करना है, सब चीज में ट्रेनिंग जरूरी है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी गौड़ीय वैष्णवों को ललिता के चरणों में सुपुर्द कर दिया, तो हम सब लोग ललिता की छत्र छाया में हैं, जैसे हमारे लिए यहाँ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ललिता जी को राजा रानी ने ऐसा आदेश दिया है कि दूर दूर तक जो भी भक्त है जिसके मन में मेरे लिए थोड़ी थोड़ी कामना है, थोड़ी थोड़ी ज्यादा नहीं है, वो उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के ले आना और अपने गोद में रखना, उनको अच्छी तरह ट्रेनिंग देना, उनको अच्छी तरह चमका देना उनको, है ना, और फिर मुझे अर्पण करना, फिर मैं उनको कृष्ण को अर्पण करूंगी। ललिता देवी बहुत दयालु है, राधा रानी के प्रतिनिधि के रूप में दूर दूर तक जो भी भक्त हैं वो चाहते हैं कृष्ण को, थोड़ा बहुत चाहते हैं, उनको सबको पकड़ पकड़ के लेके आते हैं, अपने गोद में रखती है, प्रेम से दुलार दुलार कर उनको ट्रेनिंग देती है, सजाती है, रहजाती है, और फिर कृष्ण को, राधा रानी को अर्पण करती है, फिर राधा रानी कृष्ण को देती है, कृष्ण को इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा ना, तो भी राधा रानी के अगर हाथ में आप है तो कृष्णा आपको ठुकरा नहीं सकते हैं, मना नहीं कर सकते, वो चैनल है, चैनल हाँ, डायरेक्ट अप्रोच नहीं होता है कभी भी। तो उनके एसोसिएट के एसोसिएट के एसोसिएट के शरणागति पकड़ के फिर आपने वो चैलेंज वो चेन पकड़ के आपको चलना है, ठीक है। तो अभी देखिए राधा रानी का गौरव सुनिए अपना, ललिता देवी का, वो राधा रानी के सभी सखियों के लीडर है, परम सखी है वो, और बहुत गौरवशाली है उनके पिता की तरह, जिनको उनके पिता महागोप हैं और अशोक महागोप। फिर राधा रानी के सभी लीलाओं के पीछे कृष्ण के साथ जो लीला होती है वो सभी लीलाओं की प्रेरणा राधा रानी ललिता देवी है। क्या करना है वो वृंदा देवी को गाइड करती है, और फिर वृंदा देवी मतलब संकल्पना होती है ना, संकल्पना द कंसेप्ट द विजन, वो ललिता देवी है, उसके विजन और कल्पना के अनुसार प्रेरणा के अनुसार सब लीलाएं संपन्न होती है वृंदावन धाम में। और कृष्ण के साथ में हमेशा उनका वाद विवाद होते रहता है, ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट्स कृष्णा, अक्सर उसको गुस्सा आता है, और राधा कृष्ण का प्रेम को बढ़ाने के लिए वो कभी कभी क्रोधपूर्ण बातें भी करती है। समटाइम्स यू नो यू टॉक समथिंग व्हिच इंस्टिगेट्स लव, और वो है ना क्या कहते हैं उसको, मराठी बोलते ना कोड़ा 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 घालना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वो इंग्लिश में बोलते रिडल्स, हाँ पहेली पहेली, पहेलियां बुझाने बहुत एक्सपर्ट है वो, पहेलियां बनाती है बहुत, और पहेलियां प्रस्तुत कर करके युगल जोड़ी को बड़ा आनंद देती है वो। उसके बाद में फूलों का क्या क्या कर सकते हैं हम लोग बताओ, फूलों को लेकर क्या क्या कर सकते हैं, माला बना सकते हैं और वस्त्र बना सकते हैं फूलों का, वो हमारे मंदिर में कई बार फूलों का वस्त्र बनता है, और फूलों से परफ्यूम बना सकते हैं, वेरी गुड, और क्या बना सकते हैं फूल से, होली के रंग बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं फूलों का, क्या गुलकंद खाने की चीज आ सकती है, सही है, लेकिन उत्तर सही है, लॉक कर देंगे उसको, डोंट वरी। बालियां फूलों से अलंकार बना सकते हैं, गले के हार, बाजू बंद, कलाई बंद, उंगलियां, कान के सुंदर सुंदर घुंघरू बना सकते हैं, पैर के, आप ठाकुर जी को निहारो ठीक से, मंदिर जाते ना ठाकुर जी को ठीक से निहारो, कैसे कैसे उन्होंने अलंकार पहन के रखे हैं। और मैं आगे बताता हूँ, पुष्प की गद्दी बन सकती है, पुष्प शैया, पुष्प के वितान बन सकते हैं, कमान पे पूरे फूल चढ़ा सकते हैं, ऐसे ऐसे सोची जो योजना है, पुष्प मंडल बन सकता है, पुष्प ग्रह बन सकता है, पुष्प वितान यानी कमान और अलंकार, ये सारे पुष्पों के विषय में जितनी भी कलाएं हैं उसमें मास्टर है ललिता देवी। सब फूलों का जो आयोजन है फ्लावर डेकोरेशन वो ललिता देवी के निर्देशन में होता है। इंद्रजाल में बहुत कुशल है वो, इंद्रजाल क्या होता है, मैजिक एंड जगल्स, जादू और टोना, इस विषय में बहुत कुशल है वो, केवल राधा कृष्ण की सेवा के लिए करती सब कुछ। और एक भाव है विशुद्ध खंडिता भाव, किसी को पता है क्या विशुद्ध खंडिता भाव, उसको मैनेज करने में बहुत एक्सपर्ट है वो। अभी बताता हूं तुम्हें, अभी देखो समझो, अभी आपके घर में शादी है, हाँ मैं बहुत लोगों का विवाह करता हूँ पुरोहित के रूप में, मुझे बहुत ज्यादा अनुभव है, आपको खाली एक शादी का अनुभव होगा, मुझे बहुत शादियों का अनुभव है। और सबसे बड़ा यादगार अनुभव क्या होता है कि दुल्हन हमेशा लेट आती है, कितना भी आप बताओ कितना भी समझाओ वो आपको समझाएगी, प्रभु जी वो मुहूर्त बहुत जरूरत है, वो 12:15 को ना वो राइट पैर से अंदर आना चाहिए, फिर 12:20 को ना ये होना चाहिए, फिर ये समय पे कन्यादान होना चाहिए, और खुद ही गायब रहते उस समय। हाँ एक शादी में ऐसा हुआ कि रात की शादी थी दिल्ली में ठंड में, और वो जो लड़की के पिताजी ने बार बार के पंडित जी पुरोहित जी वो 10:15 बजे वो सिंदूरदान होना चाहिए, और खुद गायब थे वो, और 10:30 को आए चिल्लाते हुए सिंदूरदान नहीं हुआ, इतना लेट हो गया। मैंने माइक पे उनको चिल्लाया 10:15 बजे आप कहाँ थे, मैंने 10:15 बजे सिंदूर डाल दिया है वर के हाथों से वधू के मांग में, आप नहीं दिया पर चुप हो गए। कहने का तात्पर्य क्या है कि लोग पहले बहुत बातें बनाते हैं लेकिन बाद में लेट कर देते हैं, हमेशा हमेशा बाद में बोलता हूँ सर मुहूर्त का क्या हो गया, प्रभु जी क्या करें अभी, देखो अभी क्या मैं कुछ क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही बोलते रहते हैं, पहले इतना बताते हैं। तो ये जो लेट आने का जो सिलसिला है ना वो भारतवर्ष में बहुत मशहूर है, बारात बोलेंगे 7 बजे आएगी तो 11 बजे पहुंच जाती है, ये फिक्स टाइम है, मतलब 4 आवर्स मिनिमम लेट होता ही है उसका। तो देर होने के बाद में एक एंग्जाइटी पैदा होती है ना। जैसे भगवान ने मुरली बजा दी, अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया, उन्होंने मुरली बजा कर बुलाया कि मैं पहुंच गया उधर, किधर हो आप? तो राधा रानी अभी भी श्रृंगार कर रही है समझो। तो उसके बाद में जो कृष्ण बार बार मुरली बजा कर सिग्नल दे रहे हैं कि मैं पहुंच गया, तुम किधर हो, तुम किधर हो, तो जो एंग्जाइटी उत्पन्न होती है ना, उसको विशुद्ध खंडिता भाव कहते हैं। कृपा करके आपकी शादियों में उसको नहीं अपनाना, मेरी विनती है आपको। तो उस विशुद्ध खंडिता भाव का निर्माण होने के बाद में, मिलन होने तक, वो शांत होने तक जो 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 समय है, उसका मैनेजमेंट ललिता करती है बहुत ही कुशलता से। थोड़ा इंट्रिकेट मैटर है, सूक्ष्म, ठीक है। उसके बाद में तो ललिता देवी का गौरव बहुत ही विशाल है, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। अभी मैं आपको ना यहां पर क्या क्या स्थान है वो बताऊंगा। ऊंचा गांव का स्थान महात्म्य, ये जहां पर आप बैठे हैं वो देह कुंड है। कहते राधा कृष्ण ने यहां पर विवाह करके यहां पर बहुत दान दे दिया देह कुंड के किनारे पर। तो हमको भी अपनी भावनाओं का, जो वासनाएं हैं, जो नेगेटिव विचार है, सबका दान यहां देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यहां पर बहुत संतों ने तपस्या किया है, बड़े बड़े वृंदावन के गोस्वामी लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर अपना एकांत भजन किया है, मैं जानता हूँ पर्सनली। ऊपर ललिता देवी का जन्म हुआ है, और एक यहाँ पर नारायण भट्ट गोस्वामी हुए हैं जो नारद मुनि के अवतार हैं, और उन्हें उनका जन्म यहाँ पर हुआ है। और राधा रानी का लीला जब हुआ, कृष्ण का लीला हुआ, तो उसके बाद में बहुत साल बीते, सब लुप्त हो गया, तो ललिता देवी का जो ओरिजिनल मूर्ति था राधा कृष्ण के साथ एक शिला में था, वो शिला का उत्खनन और संशोधन उन्होंने किया, दोबारा प्रकट किया। आज मंदिर में विग्रह है, वो बाद में बनाए गए, लेकिन एक शिला रखी हुई नीचे, काले रंग की शिला है, उसमें ललिता देवी कृष्ण के साइड में है, फिर कृष्ण है, फिर उनके बाएं बाजू में राधा रानी है। ये तीन दर्शन उस शिला के अंदर है, उनको आपको दर्शन करना है ऊपर पहाड़ पे। सभी मेहमानों से विनती है कि शोर न करें। फिर यहां पर एक पर्वत है, अभी आपको ऊपर एक और चीज देखना है, ऊपर से बरसाने के चारों पांचों शिखर एक साथ दिखाई पड़ते हैं, वो सुंदर मनोरम दृश्य आप देखने को भूलना नहीं, मैं बताऊंगा कहां देखना है आपको। तो वो इस तरफ है, और उसी तरफ एक लंबा छोटा सा पहाड़ है, लेकिन बहुत लंबा है, उसका नाम क्या है, सखीगिरी। सखी यानी ललिता देवी को सखी कहते हैं, ललिता सखी, तो उसका पर्वत है वो। उस पर्वत पर बहुत सारी लीला हुई है। सबसे पहले भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन राधा रानी बड़े प्रेम से ललिता देवी का विवाह कृष्ण से करती है, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन, और उनका विवाह इतना सुंदर संपन्न हुआ है। आज भी भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन ललिता का ब्याहवला मनाते हैं, ब्याहवला मतलब ब्याह वाला मतलब शादी, पूरा ब्रज के लोग यहाँ पर आते हैं उस दिन, और उस विवाह उत्सव का लाभ लेते हैं। उस विवाह के पश्चात राधा रानी ने स्वयं झूला बनाकर नव विवाहित ललिता और श्याम सुंदर जी को उस झूले में बिठाकर उनको झुलाया है। वो स्थान भी ऊपर है जहाँ पर उनका विवाह हुआ था और झूला झुलाया गया था। उसके बाद में कहते हैं कि ललिता की गाय का दुग्ध दोहन कृष्ण ने किया था, ललिता देवी ने उस बछड़े को पकड़ा था और कृष्ण ने ललिता की गाय का प्रेम से दोहन किया था। वो भी स्थान ऊपर, ऊपर एक स्थान है छप्पन कटोरा, वहां पर ललिता देवी और सखियों ने मिलकर कृष्ण को पत्थर में बने हुए कटोरा में दूध दही माखन खिलाया था। वो छप्पन तो नहीं बचे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं। आप आश्चर्य, ऐसे वेल फॉर्म्ड कप कप्स इनसाइड द स्टोन, वो भी ऊपर है। उसके बाद में वो ऐसा है कि राधा रानी का रूपने का बहुत बड़ा महत्व है, प्रेम के रस को बढ़ाने के लिए राधा रानी बीच में मान कर दिए। तो मेहंदी लीला भी है, सखियां उनके हाथ में मेहंदी रचाती है, कभी कभी मेहंदी के बाद में कृष्ण कुछ ऐसा शरारत करते हैं तो राधा रानी रूठ जाती है और रूठ कर सखीगिरी में आके बैठती है। और पता नहीं अभी कि हमारी संस्कृति सब नष्ट हो गई, पुराने जमाने में लड़कियां जब रूठती थी तो पहाड़ पर जाकर बैठ कर ना ऐसे पत्थर पर हाथ घिसते थे, ऐसे दुख से ऐसे ऐसे। दोनों हाथ में मेहंदी लगी हुई है और दोनों हाथ ऐसे पत्थर में घिस रही है, तो पत्थर पिघल रहा है भाव से इनके देख के। तो बहुत सारी शिलाएं हैं जो भी लुप्त हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी शिलाएं हैं भी, वो मेहंदी के हाथ के निशान उस पर पड़े हुए हैं, तो उनको मेहंदी शिला के रूप में जाना जाता है। तो वैसे भी बहुत सारे शिला हैं, लेकिन अभी वो ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन नजर में आ सकता है। लेकिन एक मेहंदी शिला देख सकते हैं आप, अभी भी उसको मेंटेन करके रखा हो। वो ऐसा है कि जैसे आप कल लोग फिसले थे ना, सब लोग फिसले नहीं शिला में, सबको अच्छा लगा ना बहुत। मैंने देखा बड़े से बड़े उम्र वाले सब बच्चे बन गए थे, क्या आनंद था वो देखने के लिए। मैं वहीं बैठ के देख रहा था, हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े विद्वत्ता पूर्ण और सम्मान पूर्ण, ऐश्वर्य पूर्ण, गौरव पूर्ण जितने व्यक्ति थे, सब बालक बनकर झूल रहे थे। और बहुत सारी वीडियो हमने निकाले, उसमें बेस्ट वीडियो हमारे सावंतवाड़ी के माता जी का था। वो पूरा दुनिया में चला गया अभी तक, सब जगह जिस प्रकार से वो झूली है, वाह क्या बात करें। किसी ने मुझे बोला, प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा ये वीडियो देखो, आपको कृपा मिल जाएगी। सी द वीडियो एंड यू विल सी द मर्सी। मैंने भेज दिया मैसेज। तो वैसी एक शिला इधर भी है, फिसलनी शिला, लेकिन यहाँ पर झूलना मना है, वहां पर झूलना अलाउड है। तो यहाँ पर राधा कृष्ण जुगल जोड़ी झूलते थे, फिसलते थे, स्लाइड रोल फिसलनी शिला पे, और उनके हाथों में और पैरों में दोनों जगह मेहंदी लगाई रहती है। और जब वो ऐसे झूलते ना, ऐसे पैर लेकर, हाथ में कैसे सबके पैर लगे कि ना, उसको लास्ट में जाके ऐसे धाड़ करके सबके, बहुत लोगों के ऐसे जाके पैर लगे हुए, वैसे ही जब झूल कर नीचे आते थे और जब उनके चरण चिन्ह वहां लगते थे, तो चारों चरणों के मेहंदी के चिन्ह वहां पर बने हुए। तो फिसलनी शिला भी है और उसके एंड में मेहंदी शिला भी है, एक साथ में दर्शन है। ऐसा एक मंदिर बनाकर उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, केवल दर्शन करना है उसका। और नारायण भट्ट गोस्वामी ने ललिता जी का विग्रह तो प्रकट किया ही क्या, उनको स्वप्न में राजा रानी आई और कहा कि मेरे विग्रह जो है बज्रनाम ने बनाए थे, वो भी उधर है भानुगढ़ के पत्थर में, तो उन्होंने उनको प्रकट किए। नारायण भट्ट गोस्वामी इतने महत्वपूर्ण संत हैं, चैतन्य महाप्रभु के समय थे वो यहाँ पर। तो यहाँ से वृंदावन गए मदन मोहन जी मंदिर में, उन्होंने दर्शन किया। अरे चमत्कार कैसे हुआ पता है आपको, तो जब पहुंचे वृंदावन में कृष्ण की प्रेरणा से, तो मदन मोहन जी का मंदिर जो है सनातन गोस्वामी कृष्णदास ब्रह्मचारी उनको संभालते थे, बंद हो चुका था दर्शन। और ये दर्शन बंद होने के बाद आए, दोपहर को शायद 2-3 बजे आए होंगे, 1 बजे दर्शन बंद होता है, राजभोग के बाद शयन होता है ना दोपहर का। तो ये जैसे आए मंदिर अपने आप खुल गया और मदन मोहन जी बात करने लगे इनसे, नारायण भट्ट गोस्वामी से। उनकी बातें सुनकर दोनों सोए हुए थे, सनातन जी महाराज और कृष्णदास ब्रह्मचारी, दोनों उठ गए और देखा कि महान विभूति आए हैं यहाँ पर, तो गले लगाया और अश्रुओं का प्रवाह किया। फिर भगवान ने स्वप्न में निर्देश दिया था कि सनातन गोस्वामी के जो शिष्य हैं कृष्णदास ब्रह्मचारी, उनको गुरु बनाना और उनकी शिक्षा ग्रहण करना। तो वहीं पर रहकर नारायण भट्ट गोस्वामी ने उनकी शिक्षा ग्रहण की, फिर उनको ये यहाँ उन्होंने प्रकट किया है। उसके बाद में उस समय ना ब्रज की सारी संस्कृति लुप्त हो चुकी थी, मतलब ब्रज की लीलाओं को सजाना, प्रस्तुत करना लोगों के लिए, ब्रज का लीलाओं का ड्रामा करना, डांस अलग अलग प्रकार के, संस्कृति ना हमारा कल्चर। देखो ब्रज केवल मंदिर और दर्शन कथा नहीं है, एक संस्कृति है, इट्स अ कल्चरल रेवोल्यूशन। तो वो जो नष्ट हो चुका था, वो सारा संस्कृति जो है ब्रज की, उन्होंने पुनर्स्थापित की। ये उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और हमारे गोस्वामियों ने, छह गोस्वामी ने उस तरफ जो दक्षिण तरफ जो वृंदावन है उसका पूरा जीर्णोद्धार, लीलाओं का पुनरुज्जीवन किया। और उत्तर की तरफ जो काम्यवन है, राधा रानी है, ललिता का गांव है, यहाँ के जो क्या कहते हैं जीर्णोद्धार, रिहेबिलिटेशन, रेनोवेशन जो भी है, वो नारायण भट्ट गोस्वामी ने किया। जो जो लीलाएं हमारे गोस्वामी के हिसाब में नहीं है, वो सब लीलाएं ब्रज भक्ति विलास, ब्रज प्रेमानंद सागर, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में उन्होंने लिखा है। तो उनकी समाधि जो करेला गांव में है, शायद आपकी सबकी इच्छा होगी और भगवान की कृपा होगी तो वहां पर भी हम जाएंगे। तो बज्रनाम द्वारा जो निर्माण किए गए थे, वो बहुत सारे विग्रह उन्होंने पुनर्प्रकाशित किए, उसमें प्रमुख विग्रह लाडली लाल जी के हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। कल एक बात बताना भूल गया था मैं कि जो बिमल कुंड जब बना, तो बिमल कुंड का जो जीर्णोद्धार है वो बज्रनाम ने किया था, उसके किनारे वगैरह बहुत सुंदर घाट बना के उसको स्थापित किया था बज्रनाम ने। तो नारायण भट्ट गोस्वामी ने, इतने वो महान सिद्ध संत थे कि उसके पहले, मतलब जब कृष्ण यहाँ पर थे ब्रजवासियों के साथ, तो ब्रजवासी कृष्ण के पास गए और बोले, अरे कृष्ण हमें तो त्रिवेणी जाने का दिल कर रहा है, लोग बताते हैं बहुत पवित्र स्थान है गंगा जमुना सरस्वती का, हम तो इतना दूर नहीं जा पाते, आप कुछ करो हमारे लिए कृपा। तो श्री कृष्ण भगवान ने सबके आंखों के सामने गंगा यमुना और सरस्वती को प्रकट किया और सबने देखा वास्तव में तीन नदियां प्रकट हो गई है। और वो अचानक तीन नदियां एकत्र हो गई और एक कुएं में घुस गई, मतलब कुआं क्या बना, त्रिवेणी संगम। तो वो त्रिवेणी कूप जो है वो इधर है, उसका भी आपको दर्शन कराएं, वो खेत के अंदर है। क्या कहे आपको, सारे धाम उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं त्रिवेणी के साथ। और सोमवती अमावस्या के दिन नहीं, त्रिवेणी जब त्रिवेणी में जब कुंभ होता है, कुंभ मेला इलाहाबाद में, तभी ये फ्लड होके बाहर आता है, उसको देखने के लिए सारे ब्रजवासी आते हैं, उसमें स्नान करते हैं। ब्रजवासियों को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, टिकट निकाल के सब कुछ ब्रज में है। हाँ, तो वो त्रिवेणी कूप जो है वो ऐसे भर भर के बाहर आता है उस दिन, क्योंकि भगवान के धाम में आश्रय लिया उसने त्रिवेणी संगम में। तो ये भगवान ने निर्माण किया त्रिवेणी कूप है, लेकिन वो भी लुप्त हो चुका था। तो उसके बाद में जब नारायण भट्ट गोस्वामी आए तो फिर ब्रजवासियों ने उनको विनती किया आपको त्रिवेणी का दर्शन कराओ। तो अपने बल से, भक्ति बल से उन्होंने गंगा यमुना सरस्वती जो निर्माण था यहाँ पर, उसको पुनः प्रकाशित किया सब ब्रजवासियों के आंखों के सामने, और फिर वो नदियां उनके अंदर चली गई। तो पहले मुझे एक ही पता था, लेकिन बाद में पढ़ा तो दो बार ये लीला हुई है, ऐसा बहुत दिव्य स्थान यहाँ पर है। और एक और विशेष स्थान है यहाँ पर, आप लिख रहे हैं तो आपको याद रहेगा, बाद में फिर भूल जाएंगे। ललिता देवी की मैत्री रेवती से थी, रेवती पता है आपको, जिसका विवाह बलराम से हुआ, रेवत राजा की पुत्री रेवती, पर लंबी कथा है उसकी। वो द्वापर युग की थी और बड़ी ऊंची थी बहुत। पति ढूंढते ढूंढते पिताजी हार गए, बोले इसका योग्य पति है ही नहीं कौन। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए कि क्या करूं, उसके लिए पति बोलो, बोले इसके लिए एक ही पति है जो पृथ्वी पर अभी वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में अवतार ले चुके हैं, जिनका नाम बलराम जी है, कृष्ण के प्रथम अवतार है, वो लीला कर रहे हैं, जाके उनसे विवाह करो। तो फिर वो वापस पृथ्वी पर आए ब्रह्मा लोक से और बलराम जी के घर में जाके बातचीत की। तो बलराम जी ने सोचा ठीक है मैं कर लूंगा मेरा विवाह इसके साथ, लेकिन एक ही समस्या थी, बलराम जी द्वापर युग के साइज के थे और रेवती सत्ययुग के साइज के थी। तो बलराम जी ने क्या किया, ऐसा हल उठाया, अपने साइज का बना दिया, समझ में आया कुछ, हल पकड़ के हल के तो ऐसा आगे होता है ना, उससे कंधे पे लगाया, उसको नीचे खींचा और अपने लिए बराबर कान तक बना दिया उसको, फिर विवाह संपन्न हुआ उनका। तो विवाह बलराम जी का रेवती का हुआ, बड़ा सुंदर महोत्सव हुआ। आज भी रेवती का दर्शन ब्रज में है, दक्षिण दिशा में दाऊ जी का मंदिर में एक सलज मर्यादा पूर्ण तरीके से वो बाजू में खड़ी है बलराम जी के। बलराम जी का 6 फुट 6 इंच का विग्रह है, बहुत सुंदर, ऐसा वारुण लेकर खड़े हैं हाथ ऊपर करके, और बाजू में रेवती जी खड़ी है। तो रेवती जी के विवाह होने के पश्चात रेवती जी, क्योंकि उनकी ललिता के साथ फ्रेंडशिप थी, अपने दोस्त को, अपनी सहेली को, अपनी सखी को अपने पति का पहचान कराने के लिए वो अपने पति को लेकर उनसे गांव आई है, और बहुत दिन तक ललिता के आदरातिथ्य में रही है वो अपने पति को लेकर। तो इसलिए वहां पर बलराम जी का और रेवती का मंदिर है, और बलराम जी रेवती का विग्रह भी है उसके अंदर, वो भी वज्रनाभ ने बनाया उसके बाद में और स्थापन किया, वो भी लुप्त हो गया। तो हीस की झाड़ी में नारायण भट्ट गोस्वामी ने बलराम जी रेवती के विग्रह प्रकट किए और पुनर्स्थापित किए, तो मंदिर भी इधर है। जय जय श्री राधे श्याम। ये ललिता देवी का एक कुंड है, अनेक कुंड है। देखो ललिता जी बहुत विशेष सखी है, जब इस सेवा कुंज में भगवान ने राष्ट्र जब रचाई, भगवान का एक बहुत ही उत्कट राष्ट्र स्थान है सेवा कुंज और निधिवन। तो सेवा कुंज में जब रास हुआ तो ललिता जी को प्यास लगी, तो भगवान ने अपने मुरली से एक कुआं खोदा, ललिता कूप। और कहा देखा आपने ललिता कूप, हाँ सबको क्यों याद नहीं है, एक ही रक्त भी याद क्यों है, पहले ही दिन आप गए थे ना वहां पर, सेकंड गए थे। दान बिहारी के बाहर देखा ना कुआं, पानी नहीं है लेकिन बहुत जमीन के अंदर पत्थर के अंदर वो सीढ़ियां बनी हुई है, तो उधर भी ललिता कूप है, बहुत जगह पर ललिता कूप है। और विशेष बात यह है कि जब ये कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया तो राधा कुंड और श्याम कुंड बनने के पहले ललिता ने अपना कुंड बना लिया वहां पर। तो कृष्ण ने राधा कुंड और श्याम कुंड के स्नान करने के पहले ललिता कुंड में स्नान किया, और ललिता राधा रानी से बहुत क्लोज है तो उसका फेवर प्राप्त करने के लिए पहले वहां स्नान किया, और फिर आके श्याम कुंड का निर्माण किया और फिर राधा कुंड का निर्माण हुआ। पर क्या बताऊं आपको मैं, एक मिनट जरूर बढ़ेंगे उस श्लोक को। आप यहां से बैठकर क्यों ना हो ललिता कुंड को प्रणाम करना, क्योंकि ललिता कुंड जो इतना विशेष कुंड है कि 7 प्रकार की हत्या का पाप उसमें स्नान करने से, आचमन करने से नष्ट हो जाता है। एक है खून यानी मर्डर, मतलब इंसान की मर्डर होती है, जब भी मनुष्य का वध होता है तो उसको मर्डर या खून कहते हैं, मनुष्य वध, कृमि हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, श्वान हत्या और आत्महत्या। आप बोलेंगे आत्महत्या के बाद नाम कैसे करेंगे? ये मुझे भी नहीं समझा है, लेकिन किसी जन्म में आत्महत्या की होगी, भूत प्रेत बने होंगे, आप पता नहीं कौन क्या बनता है, कौन कर्म क्या करता है, आई डोंट नो। एक बात मुझे ना, मैंने बहुत स्टडी किया था इस विषय पर कि हमारा एक प्रोजेक्ट है भक्ति विधान में कि गर्भहत्या नहीं होनी चाहिए, गर्भपात नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा जघन्य पाप है। अरे शास्त्र में किधर भी मुझे ये गर्भपात करने के बाद में क्या उपाय होगा, कुछ उत्साह होगा, कुछ तरीका होगा, कुछ विधि होगा, नहीं मिला मुझे। मैंने बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर कि कहीं गर्भपात का कोई उपाय है क्या कुछ बचने के लिए उससे, अगर कर दिया होगा तो। और अक्सर मैं किसी को बताता नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं, पब्लिसाइज मत करना, ललिता कुंड में स्नान करने से गर्भहत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको बताओ ही नहीं और वो उसका दुख भोगते रहे। तो क्या लिखा शास्त्र पता है आपको? गर्भहत्या करने वाले को कभी भी सूरज की रोशनी दिखाई नहीं पड़ेगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड शाप है ये। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बार बार वो माता के गर्भ में जाएगा और गर्भ के अंधकार में उसका मृत्यु हो जाएगा, मतलब गर्भपात किया जाएगा किसी के द्वारा, और वो बार 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 उस गर्भ में आता रहेगा, लेकिन कभी भी सूरज की रोशनी जन्म के रूप में उसको देखने को नहीं मिलेगी। ये गर्भहत्या का पाप का परिणाम है, वो भी परिणाम ऐसा भी जघन्य पाप है, वो भी ललिता कुंड के स्नान करने से नष्ट हो जाता है। तो भक्ति वेदांत में हमारे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है कि गर्भपात से औरतों को और परिवारों को बचाएं इस भयंकर पाप से, क्योंकि ये भयंकर पाप करने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और हमारा उद्देश्य हॉस्पिटल बनाने का लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कराने के लिए है, तो इस जघन्य पाप से बचाना भी कृष्ण भावना का कार्य है। तो अभी आप यहां बैठकर ललिता कुंड के मंत्र को बोलो, प्रणाम मंत्र को। सब लोग अच्छी तरह से बैठो, हाथ जोड़कर प्रणाम करो और मन में ललिता कुंड को ध्यान करो, नहीं देखा होगा तो भी आप ध्यान करो। नमो पातक विघ्न अग्नौ ललिता मोहनौ, नमो पातक विघ्न अग्नौ ललिता मोहनौ, शुभौ स्नपयेहम् शुभौ स्नपयेहम् विमोक्षय कुंडौ नीरमनोहरौ। ललिता कुंड को हमारा प्रणाम है जो बहुत सुंदर है, जिसमें स्फटिक जैसा जल है, वो स्नान करने वाले को मोक्ष प्रदान करता है। ये ललिता देवी के कृष्ण के प्रेम का प्रदर्शन है, प्रेम का प्रकटीकरण है, जो सभी प्रकार के बाधाओं को शुद्ध भक्ति के मार्ग से हटा देता है। 68 तीर्थ स्थान, पवित्र तीर्थ धाम इस ललिता के पुकारने से ललिता कुंड में विराजमान हो गए हैं। कृष्ण ने ललिता कुंड में पहले स्नान किया, फिर राधा कुंड श्याम कुंड का निर्माण किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा ललिता को नमन कर लेते हैं, ललिता देवी को। गोरोचन रुचि मनोहर गोरोचन रुचि मनोहर कांति देहम मयूर पुच्छ तुलिताच्छवि चारुचेलम राधे तव प्रिय सखीम च गुरु सखीनाम ताम्बुलम भक्ति ललितम ललिताम नमामि ललितम ललिताम नमामि। जिसका वर्ण गोरोचन का है, और एक बताना भूल गया मैं, उसके वस्त्र जो है मयूर पुच्छ के होते हैं, मोर पंख से बने हुए वस्त्र पहनती हूँ। जिसके जिसका वर्ण गोरोचन का है, जिसका वस्त्र मयूर पुच्छ से बना हुआ है, राधा की सबसे प्रिय सखी है और उनके सखियों के और राधा के गुरु भी है, जिसकी प्रधान सेवा तांबुल की है, ऐसे दैवी गुणम सुललितम ललिताम नमामि। तो ललिता देवी का एक विशेष सेवा है, वो राधा और कृष्ण के लिए तांबुल बनाती है। तांबुल का मतलब क्या? गोविंद लीला। आपने देखा होगा ललिता जब खड़ी होती है ऐसे खड़ी होती है, ऐसे उसके हाथ में एक प्लेट होती है और ऐसे समोसा जैसे दो लीला खड़े होते हैं उसके अंदर, वो उनके हाथ में वो तांबुल होते हैं। तांबुल सेवा उनकी प्रधान सेवा है। और उनकी सेवा क्या सुनो, जब राधा कृष्ण लीला करते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं, श्रम करते हैं, श्रम, और श्रम करने से उनके चेहरे पर और कपाल पर श्वेत बिंदु निर्माण होते हैं, तो वो बीच में जाकर वो पोंछ देती है। शी मॉप्स द ड्रॉप्स ऑफ स्वेट कमिंग ओवर द फेसेस ऑफ राधा एंड कृष्णा। जब ललिता देवी राधा रानी को जब भगवान बहुत ज्यादा आतंक से परेशान कर देते हैं, तो राधा रानी कभी बहुत डर जाती है और सहमी सहमी से हो जाती है। तो राधा रानी को जाके कहती है, Why should you feel so low in your dignity? क्यों इतना अपने आप को नीचा समझते हो? आगे बढ़ो और कृष्ण के साथ में लड़ो, कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। तो राधा रानी को काउंसलिंग करते हो, शक्ति देती है वो। फिर राधा रानी सॉरी गोपियों का नेतृत्व करते हुए ललिता कभी भाव विभोर हो जाती है, कभी क्रोधित हो जाती है, कभी गुस्सा करती है, कठोर वचन बोलती है, लेकिन कृष्ण और राधा के प्रेम में बहुत ही वृद्धि करती है। कभी कभी राधा रानी को भी वो डांटती है, क्योंकि जब वो कृष्ण के सामने बहुत ज्यादा शर्मीली हो जाती है, तो उनको डांटती है और अच्छी तरह से गाइड करती है और कृष्ण के सामने बड़े क्या कहते हैं डिग्निटी के साथ खड़ी करती है उनको। ओके, कभी कभी कृष्ण जब राधा रानी को बहुत सताते हैं तो कृष्ण को जाकर डांटती है और बताती है राधा रानी कितनी गौरवशाली है, तुम उसको क्यों तंग करते हो। विशेष रूप से सांकरी कोर में जब भी मटका फोड़ लीला होती है, कृष्ण भगवान वाद विवाद करते 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 अचानक डंडा उठा के ठॉप करके राधा रानी के सर का मटका फोड़ देते हैं। राधा रानी बहुत सहमी जाती है उस समय, तब ललिता देवी आगे आती है और कृष्ण को जोर से डांटती है। जहां जहां राधा रानी संकट में आती है वहां वहां ललिता देवी आई एम देयर डोंट फॉरगेट मैं हूं, राधा रानी को बचाती है। इसलिए वो राधा रानी को बहुत ज्यादा प्रिय है। बोलो ललिता देवी की। सब लोग ललिता के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमें राधा रानी के चरणों का सहारा देना, कृष्ण के चरणों का सहारा देना, आपके चरणों में सहारा देना, शुद्ध भक्ति देना, दुनिया के आकर्षणों से मुक्त रखना। सब कुछ अपने चरणों में हम अर्पण करने को तैयार हैं, अपना बना लेना। ललिता देवी की।